अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल है, मई की 24 तारीख। पाकिस्तान में सुबह शाम के 7, भारत में 7:30, और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर बुध को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की इजाज़त न देने का फैसला किया है। वफाकी काबीना के इजलास के बाद मंगल को इत्तेहादी जमातों के वुज़रा के साथ इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर दाखला राना सनाउल्लाह का कहना था कि ये लोग इस्लामाबाद आकर अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। उनका कहना था कि वफाकी काबीना ने फैसला किया है कि लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं दी जाएगी और उसे रोका जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखला की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट की कि वज़ीर दाखला में इतनी जुरत नहीं थी कि वो अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। सारी पार्टियों के चेहरे दिखाने की इसलिए ज़रूरत थी कि जिम्मेदारी एक पर ना आए। दरियासना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 मई को इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च से कबल मुल्क भर में पुलिस के क्रैकडाउन में दर्जनों पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारी की भी इत्तलात हैं। पंजाब और सिंध की हुकूमतों ने सूबों में अमन बरकरार रखने के लिए दफा 144 नाफिज कर दी है। और वफाकी वजीर दाखला का वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अगरचे हमारे बंधे हुए हाथ किसी हद तक खुले हैं, लेकिन इंतजामी उमूर में हमें मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि मुख्तदर हलकों की हमें सपोर्ट हासिल है, लेकिन हमें मजीद मदद की अभी भी जरूरत है। एशिया के अपने 6 रोजा दौरे को खत्म करते हुए अमरीकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन की जंग को चीन को यह पैगाम देने के लिए इस्तेमाल किया कि बैन अल-अक़वामी निज़ाम के बुनियादी उसूलों की पासदारी की जानी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमरीका के रहनुमा एक आज़ाद और खुले इंडो पैसिफिक खित्ते के फरोग, माहौलियात की तब्दीली के खिलाफ लड़ने और कोविड की वबा के खिलाफ जद्दोजहद में तआवुन के वादों के साथ टोक्यो में जमा हुए। क्वाड नामी गैर रस्मी इत्तेहाद के सरबराह इजलास के आगाज पर खिताब करते हुए, जिसमें जापान के वजीर आजम फ्यूमो कशीदा, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीस उनके साथ थे, अमरीका के सदर जो बाइडन ने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमला सिर्फ यूरोप का मसला नहीं है, बल्कि उससे बढ़कर ये एक आलमी मसला है। उन्होंने मजीद कहा कि सरहदी यकजहती और सालमियत और इख्तदार आला के उसूलों, बैन अल-अक़वामी कानून और हकूक इंसानी का इससे कतः नज़र कि दुनिया में कहाँ उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है उसका दिफा किया जाना चाहिए। क्वाड के मुश्तरका बयान में और चारों लीडरों के रिमार्क्स में चीन का बराह रास्त नाम नहीं लिया गया, लेकिन एक ऐसे इंडो पैसिफिक खित्ते की तामीर के मकसद की अहमियत पर जोर दिया गया जहां सबके इख्तदार आला और कानून की हुक्मरानी का एहतराम हो। ये सिफारती अल्फाज थे जिनके बारे में समझा जाता है कि उनका मुखातिब बीजिंग है। बीजिंग ने हालिया बरसों में अपने फौजी अखराजात में ड्रामाई इजाफा किया है, जिसमें उसकी बहरी कुव्वत भी शामिल है, और अब अमरीका के बाद ये उसका दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा दिफाई बजट है। क्वाड की ये सरबराह मीटिंग एक साल से भी कम अरसे में लीडरों की दूसरी बिलमुशाफा मुलाकात है। बाइडन अपने एशिया के दौरे के एक हिस्से के तौर पर जुनूबी कोरिया के बाद जापान पहुंचे थे। यूक्रेन के वजीर खारजा दिमित्रो कोलिबा ने मंगल के रोज हुकूमतों पर जोर दिया कि यूक्रेन की रूसी फोर्सेस से लड़ाई में मदद के लिए मजीद हथियार जल्द से जल्द फराहम करें। उन्होंने ट्वीट किया कि यह नतीजा आखस करना कबल इस वक्त है कि यूक्रेन के पास जरूरत के मुताबिक तमाम हथियार पहले ही मौजूद हैं। रूस की डोंबास में चढ़ाई एक बेरहमाना लड़ाई है जो जंग अजीम दोम के बाद सबसे बड़ी जंग है। उन्होंने अपने साथी मुल्कों पर जोर दिया कि हथियारों की फराहमी तेज कर दें। बरतानिया की वजारत दिफा ने मंगल के रोज कहा कि रूसी फोर्सेस ने डोंबास में अपनी कार्रवाईयों में शिद्दत पैदा कर दी है। उनका कहना था कि वो सेवरो डोनेट्स समेत मशरकी यूक्रेन के मुतादित शहरों को मैसूर करने की कोशिश कर रहा है। रूस के सेवरो डोनेट्स पर कब्जे से लुहांस्क का पूरा इलाका उसके जेर तसल्लुत आ जाएगा। कोलिबा की फौजी मदद के लिए इस अपील से एक रोज पहले अमरीकी वजीर दिफा लाइट ऑस्टन ने कहा कि तकरीबन 20 मुल्क यूक्रेन को नए सिक्योरिटी इमदादी पैकेज भेज रहे हैं। ऑस्टन ने यूक्रेन के दिफाई राबते के ग्रुप के साथ पेंटागन में दूसरी मीटिंग के अख्ताम पर अखबारी नुमाइंदों से ये बात कही। अमरीकी फौज के चोटी के अफसर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली के मुताबिक इस इजलास में 47 मुल्कों ने वर्चुअली शिरकत की। ग्रुप का अगला इजलास 15 जून को ब्रसल्स में होगा। ऑस्टिन का कहना था कि यहां मौजूद हर एक ये समझता है कि इस जंग का दायरा सिर्फ यूरोप तक महदूद नहीं है। सदर बाइडन ने भी मंगल के रोज जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के लीडरों से मुलाकात में इसी तरह के पैगाम में कहा था कि यूक्रेन की लड़ाई सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि ये एक आलमी मसला है। बाइडन ने अमरीकी इमदाद का इरादा करते हुए अहद किया कि जब तक रूस ये जंग जारी रखता है, अमरीका अपने साझेदारों के हमराह ये आलमी इमदाद जारी रखेगा, क्योंकि ये दुनिया के तमाम हिस्सों पर असरअंदाज होगी। उधर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की ने पीर की शब एक वीडियो खिताब में कहा कि रूस ने यूक्रेन पर 3 माह पेशतर जंग शुरू होने के बाद से तकरीबन 1500 मिसाइल फायर किए हैं, जिनमें ज्यादातर का निशाना शहरी ठिकाने थे। इन खबरों में से कुछ इत्तलात एसोसिएटेड प्रेस AFP और रॉयटर्स खबर रसा इदारों से ली गई हैं। यूरोपीय यूनियन मुमकिन तौर पर दिनों के अंदर रूसी तेल की दरामद पर पाबंदी आयद करने पर राजी हो जाएगी। यह बात जर्मनी के वजीर इक्तिसादियात रॉबर्ट हेबेक ने एक चैनल ZDF को बताई। ताम हेबेक ने खबरदार किया कि रूसी तेल पर तजारती पाबंदी खुद ब खुद क्रेमलिन को कमजोर नहीं करेगी, क्योंकि बढ़ती हुई कीमतों के पेश नजर मॉस्को कम मकदार में तेल फरोख्त करके भी ज्यादा आमदनी हासिल कर सकेगा। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि जिम्मे में एक गौर तलब पहलू यह था कि तेल के लिए मजीद कोई कीमत अदा न की जाए बल्कि उसकी बालाई हदूद पर इत्तेफाक किया जाए। ताहम जर्मनी के वजीर इक्तिसादियात ने जोर दिया कि रूस के खिलाफ इस इकदाम के लिए बहुत से ममालिक को मुश्तरका सोच अपनाना होगी। पाकिस्तान का सूबे खैबर पख्तूनख्वा मुल्क का पहला सूबा है जहां अदालती अहकामात के तहत तमाम 35 अजला में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात का अमल मुकम्मल होने के बाद ज्यादातर अजला और तहसीलों में मुंतखब होने वाले मेयरों और तहसील चेयरमैनों ने अपने ओहदे संभालने के बाद काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुल्लका नई सरहदी गुजरगाहें खोल रहा है, जबकि 5 गुजरगाहें पहले ही मुकम्मल तौर पर माशी सरगर्मियों और मुसाफिरों की आमदरफ्त की सहूलतें फराहम कर रही हैं। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में खसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक ने एक ट्वीट में बताया कि चित्राल में अरांदू और जेरी दीर में बेनशाही इस सिलसिले की पहली 2 गुजरगाहें हैं जो काम शुरू कर देंगी। तालिबान हुकूमत ने मंगल के रोज काबुल में एक तकरीब में मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनी GAAC के साथ काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 2 दूसरे इलाकाई एयरपोर्ट्स के ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए एक माहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। तकरीब से खिताब करते हुए मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर ने कहा कि यह माहदा काबुल और बाकी दुनिया के दरमियान सरमायाकारी के रास्ते खोलेगा। उन्होंने कहा कि तालिबान हुकूमत तमाम मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुक चाहती है और मुख्तलिफ शोबों में उनकी सरमायाकारी की जमानत देती है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर ने काबुल में रिपोर्टर्स से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ एयरपोर्ट की ग्राउंड हैंडलिंग माहदे की तजदीद कर रही है। दूसरी जानब मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत खारजा की जानब से इस मामले पर फौरी तौर पर कोई रद्दअमल सामने नहीं आया है। यूनेमा के लिए अफगानिस्तान के लिए खसूसी नुमाइंदा डेबरा लियोन ने पिछले 2 रोज में कंधार और मजार शरीफ के दौरे किए और सहाफियों और सरगर्म खवातीन से मुलाकात की। उन्होंने बल्ख में लड़कियों के एक स्कूल का भी दौरा किया। उन्होंने तमाम अफगानियों के हुकूक, खुसूसन ख्वातीन और लड़कियों के हुकूक की पासदारी और तमाम तबकों की शमूलियत से एक जामे हुकूमत के क्याम पर जोर दिया। बगदाद से खबर रसां इदारे AP ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस्लामिक स्टेट ग्रुप यानी दाइश के जंगजुओं ने इराक में 2 अलग अलग हमलों में 12 शहरियों को हलाक और कम अज कम 6 को जख्मी कर दिया। और सिक्योरिटी हुकाम ने बताया कि बजाहिर हमलावरों ने रेत के उस तूफान का फायदा उठाया जिसमें के सबब पूरे मुल्क में हद निगाह बहुत कम हो गई थी और थोड़े फासले तक भी देखना मुश्किल था। ये हमले पीर की शाम करकूक दयाला सूबों में किए गए जहां किसानों को उस वक्त हदफ बनाया गया जब वो अपनी फसलें काट रहे थे। खबरसा इदारे AP ने यरूशलम से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इसराइली हुकाम ने मंगल को रोज कहा कि उन्होंने तशद्दुद में इजाफे के दौरान, जिसमें हालिया हफ्तों में दर्जनों लोग मारे गए हैं, एक रुकने पार्लियामेंट को गोली मारने, सिपाहियों को अगवा करने और यरूशलम के लाइट रेल सिस्टम को बम से उड़ाने के फलस्तीनी ग्रुप हमास के एक बड़े मंसूबे को नाकाम बना दिया है। इस बारे में जारी किए गए बयान में यह नहीं बताया गया कि ग्रुप इस मंसूबे पर अमल दरामद के कितने करीब पहुंच गया था। हमास ने इस बारे में फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया है। यमन के हौसी बागियों ने कहा है कि मुल्क दारुलहुकूमत में उस वक्त 3 लोग हलाक हो गए जब एक ड्रोन एयरक्राफ्ट एक मुजाफाती इलाके में मार गिराए जाने के बाद तबाह हो गया। हौसियों ने एक बयान में कहा कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने निगरान ड्रोन को मार गिराया और यह कि वो सऊदी क्यादत के इत्तेहाद की मिल्कियत है जिसके साथ वो हालत जंग में हैं। हौसियों के दावे की फौरी तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। इत्तेहाद के एक तर्जमान ने तबसरे की दरख्वास्त पर फौरी तौर पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। यमन में 2 माह की फायरबंदी नाफिज है जो सन 2014 में मुल्क की खारजंगी के आगाज से मुल्क में पहली मुल्कीर सतह की फायरबंदी है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और दुआओं का इजहार करते हैं जिसके लिए हम आपके फर्दन फर्दन मशकूर हैं। अपनी इन मोहब्बतों को और दुआओं को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।